स्नेही तपस्वी मुरत शीलू दीदी जी पहुंच चुकी हैं। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी जी आज दोपहर को 1:30 बजे ही पहुंचे हैं और देखो आपकी प्रति दीदी की कितनी लगन है कि नहीं हमारे भाई बहने इतना त्याग तपस्या और सेवा की लालायित हैं, तो हम दीदी जी का नीतू बहन को कहेंगे कि तिलक लगा करके दीदी जी का स्वागत करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें, साथ साथ एक हाथ की ताली से, क्योंकि अभी मौन शुरू हो रहा है तो हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। दीदी जी से सभी परिचित है ना, बाल्यकाल से ही आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया, आप कॉलेज में पढ़ते थे यानी साकार बाबा मम्मा के समय आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया और तब से ही आपका ये लक्ष्य रहा कि बाबा की बेहद की सेवाओं को करना है। कितना ऊंचा लक्ष्य बाल्यकाल से हो तो जरूर बाबा भी मदद करता है, तो बाबा की भी मदद जरूर है, लेकिन अपना लक्ष्य जब होता है तो हमारे अंदर वो लक्षण भी आते हैं। तो हम शीलू दीदी को देख ही रहे हैं कि कितने न सिर्फ भारत लेकिन भारत के बाहर विदेशों में भी कई स्थानों पर आप ईश्वरीय संदेश देने का कार्य कर रही हैं। आपने स्टार्टिंग में बॉम्बे में भी सेवाएं की, तत्पश्चात आप विदेशों में भी गई, विदेश के सेवा केंद्रों पर भी रह करके आपने कई सेवाएं की, उसके बाद हमारी दादियों और बाबा के कहने के अनुसार श्रीमत अनुसार आप मधुबन में रही और मधुबन में रह करके शिविरों का जो आयोजन किया जाता आप शिविरों को भी कराती रही, साथ साथ मधुबन में जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनमें भी आप पूर्ण रीति से अपना सहयोग देती रही, और रिफ्रेशिंग कोर्स जो हमारे भाई बहनों के होते हैं या टीचर्स बहनों की बच्चियों के होते हैं उनकी भी बहुत सुंदर क्लासेस आप कराती हैं, और साथ साथ आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप सभी ने अभी अभी सुना होगा कि शीलू दीदी के 7 वर्ष ना दीदी 7 वर्ष मनाए ना मीटिंग के समय
उम्र 70 साल
देखा 75 साल कितनी अच्छा है कि कैसे बाबा को
60 साल से ज्ञान में
है ना, 75 साल इस शरीर की आयु के सोचो आज दुनिया के अंदर 60-75 वाले को देखे तो लुढ़कते रहते हैं,
70
और यहाँ हमारी दीदी तो युवा लगती हैं, हर समय कहीं न कहीं जाती रहती है। तो ऐसी दीदी जी का
आजी अमेरिका से आई हूँ,
देखो मैंने कहा ना दोपहर को 1:30 बजे आए, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करके तो भी देखो दीदी ने ना नहीं कहा, शायद आप हम होते तो कहते कि कल कराए तो चलेगा है? लेकिन दीदी की विशेषता कि आने के साथ भी उन्होंने कह दिया कि मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, यही तो बड़ी बात है। तो इसलिए आपके प्रति हमें भी बहुत नाज है, बाबा को भी नाज है, इसलिए बाबा ने आपको एक बहुत अच्छा वरदान दिया है, उस वरदान को आप सार्थक कर रही हैं। बाबा ने खास शीलू बहन से कहा कि आपकी जीवा पर सरस्वती देवी विराजमान है, इतना सुंदर वरदान जिनको मिला हो है? तो ऐसी सरस्वती देवी जी से आज हम भी इस बत्ती का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है वो सुनना चाहेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी, शरीर का नाम तो शीलू दीदी ने बताया कि कुंती बहन है, मैं 12 वर्ष की थी साकार बाबा के समय इस ज्ञान को लिया, 66 में एग्जीबिशन देखा था, लेकिन जहां हम रहते थे वहां सेवा केंद्र नहीं था, 25-30 किलोमीटर की दूरी पर सेवा केंद्र था लेकिन तब पता नहीं चला। फिर 68 से लेकर के हम रेगुलर बने, 2 वर्ष पता ही नहीं चला था, तो 68 से बाबा के इस ज्ञान में रेगुलर चले और 72 से अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की, और साथ साथ बॉम्बे के ही कई सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं दी, वर्तमान समय भोरीवली सब चून के कनेक्शन में मलाड जहां हमारी दादियों ने हमारी दीदियों ने खूब सेवा की हुई है उस स्थान पर सेवा के लिए निमित्त है। और साथ साथ बाबा ने एक और भाग्य है जो कहें कि दिया कि ट्रांसपोर्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है। ओम शांति।
हमको तो वाइस चेयरपर्सन बना दिया एजुकेशन विंग का। नहीं, हमको वाइस चेयरपर्सन बना एजुकेशन
विंग की दीदी वाइस चेयरपर्सन बने हैं। वाह, बहुत अच्छा। आज देखो नई नई खुशी के समाचार। समय आता है सबका प्रमोशन होता है ना? तो हम भी ब्राह्मण सो फरिश्ता प्रमोशन करेंगे ना।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी तीन बार ओम शांति कहते हैं और बड़े नशे से कहते हैं, फिर उसका अर्थ भी अलग अलग बताते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, ये उनका मूल मंत्र है जिसमें सारा ज्ञान का सार आ जाता है और उसी की जागती मूर्ति है दादी जी, जिनसे हम सभी प्रेरणा लेते हैं। आज भी दादी जानकी जर्मनी में हैं, वह बहुत बड़ी रिट्रीट यूरोपियन टीचर्स की रिट्रीट चल रही है और 17 तारीख को निकल के सीधा आएंगे शांतिवन। तो देखो इस 103 वर्ष की आयु में भी वो लगन, वो शक्ति, वो ऊर्जा दादी की अनुभव करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? कई कहते ना हम इतने बूढ़े हो गए हैं, अभी वो ताकत नहीं है। तो दादी जानकी को देखते हैं, वो ताकत कहाँ से लाती है? अशरीरी हो जाती है, बस यही उनकी युक्ति है। अशरीरी हो जाती है और वो शक्ति आ जाती है, क्योंकि शांति की शक्ति भी उसी से मिलती है। तो बहुत खुशी हुई आप सब से मिलकर, बहुत लंबा टूर किया एक महीने का। 15 जुलाई को निकले थे, 15 अगस्त वापस आए। सारा ईस्ट कोस्ट अमेरिका का, मिड वेस्ट कोस्ट, पूरा 20 शहरों में 30 दिन में कवर किया। इतना बड़ा प्रोग्राम था, सब अधिकतर रक्षाबंधन थी का कार्यक्रम था। तो आप सभी भट्ठी करने आए हैं और आप सभी ने आते ही ये माला पहन ली। अच्छी लग रही है ना माला? माला पहनी माना विजय माला है ये, और ठप्पा भी लग गया। क्या लिखा है बैज पर? संस्कार परिवर्तन, हाँ? मौन तपस्या पट्टी। तो संस्कार परिवर्तन, मौन तपस्या पट्टी, यही इस पट्टी का लक्ष्य है। संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? मौन तपस्या करने से, और उसके लिए भट्टी में पढ़ने से। तो वो भट्टी में पढ़ने के लिए आप सब यहाँ आए हो। तो सबसे पहले मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि के सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से, दादियों की तरफ से, दादाओं की तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन ब्राह्मण कुलभूषण की आन मान शान है, ये अनुभव हम यहाँ अनुभव करते हैं, ब्रह्मा बाबा के चार धाम, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की और इतना पावरफुल वातावरण बनाया, उसका अनुभव करने के लिए देश विदेश के बच्चे बाबा के घर में आते हैं। तो आप सभी ऐसे स्थान पर बट्टी करने आए हैं और देखो मौसम भले बारिश नहीं है लेकिन सूक्ष्म वतन का अनुभव यहाँ कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन का अनुभव है, जैसे सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे हैं। तो सूक्ष्म वतन में सैर कौन करते हैं? फरिश्ते। तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते सैर करते हैं, तो यहाँ अगले 3-4 दिन मौन में तो रहेंगे लेकिन साथ साथ फरिश्ता का भी अनुभव करना है। जैसे ये शरीर हड्डी मांस का नहीं है लेकिन प्रकाश का शरीर है, बाबा ने उस दिन भी कहा अंतवाहक शरीर। अंतवाहक शरीर माना सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर माना जिनके पैर धरती पर नहीं पड़ते, जो फर्श से ऊपर अर्श में ही सैर करते हैं, अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरती की ओर आकर्षित नहीं होते। तो ऐसा अनुभव आपको ये अगले 3-4 दिन करने हैं, और उसमें मुख्य यही लक्ष्य रखना है कि हमें अपने अंदर जो पुराने संस्कार हैं उनको बदलना है। भट्टी में कोई चीज पड़ती है तो बदल जाती है ना, बहुत तेज अग्नि हो और उसमें कोई भी चीज डालो वो उसी रूप में बाहर नहीं आती, बदल जाती है, उसका गुण भी बदल जाता, रंग भी बदल जाता, उसका जैसी चीज होगी उस रूप से नहीं आएगी वापस। तो पुराने संस्कार जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं उनका परिवर्तन करने के लिए यहाँ आप आए हो और उस भट्टी में आप पहुंचे हो। कोई भी चीज भट्टी में पड़ी बदल कैसे जाती है, क्या क्या उसमें गुण आ जाते हैं, अलग अलग पाते हैं, अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग प्रकार के गुण होंगे। अब टमाटर डालेंगे आग में तो क्या होगा, भट्टी में डालेंगे आग तप रही है उसमें टमाटर डालते हैं, आलू डालते हैं, बैंगन डालते हैं तो क्या होता है, बर्था बन जाता है ना, नरम हो जाता है। वो सख्त चीजें हैं, वो सख्त चीजें नरम बन जाएगी। फिर उसमें कच्ची मिट्टी की ईंट डालो, कच्ची मिट्टी बहुत नरम है पर वो भट्टे में डालने से क्या होता है, कड़क बन जाती। तो कोई चीज नरम बन जाती है, कोई चीज कड़क बन जाती है। फिर अशुद्ध सोना डालो, खाद वाला सोना, तो क्या बन जाता है, वो सोना शुद्ध बन जाता है, सारी खाद निकल जाती है। काला काला कोयला डालो आग में तो क्या हो जाता है, हाँ, राख बन जाता है, कलर ही बदल जाता है, पहले लाल हो जाता है फिर धीरे धीरे वो राख बनता जाता है। तो देखो उस अग्नि में भी कितनी विशेषता है, और यहाँ बाबा कहते हैं ये योग की अग्नि है, ज्वालामुखी योग, जिस अग्नि में सब कुछ बदल जाए। तो पहले तो हमें ये मालूम हो कि ऐसे कौन से संस्कार हैं हमारे अंदर जो हमें दुख दे रहे हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं, हमारे ही उन्नति में विघ्न डाल रहे हैं और योग में भी विघ्न डाल रहे हैं, ऐसे कौन से संस्कार होंगे, उसको परखने की सबसे सहज विधि क्या है, बाबा की मुरली, बाबा की मुरली, बाबा की श्रीमत, श्रीमत से मुरली से पता चलता है कि अभी तक मेरे अंदर कौन कौन से पुराने संस्कार हैं जो हमें मिटाने हैं। हर मुरली के अंदर कई ऐसे बातें आती है जिसमें बाबा कहेंगे बच्चे ये करो ये करो ये करो, या कहेंगे बच्चे ये मत करो ये मत करो ये मत करो। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बाबा की मुरली से श्रीमत मिलती है। सवेरे से लेकर रात्रि तक की श्रीमत है, हर संकल्प के लिए श्रीमत है, हर बोल के लिए श्रीमत है, हर कर्म के लिए श्रीमत है, हर व्यवहार के लिए श्रीमत है। तो उस श्रीमत के अनुसार हमारा व्यवहार हो, हमारी सोच हो, हमारे बोल हो, हमारे कर्म हो, मानो कि हमारा जीवन ही उसी अनुसार हो, यही है पुरुषार्थ। अगर उस अनुसार पुरुषार्थ है तो बाबा कहते हैं कि वो सही पुरुषार्थ है। अगर थोड़ी सी मनमत या परमत जोड़ दी तो वो फिर सही पुरुषार्थ नहीं कहलाई जाएंगे। तो सही पुरुषार्थ माना 100% श्रीमत। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था जिनको बाबा देख करके पुरुषार्थ करे। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने तुरंत किया जो भी शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा ने कहा कि ऐसी नई दुनिया तुम्हें बनानी है, स्वर्ग का साक्षात्कार करा दिया। तो बाबा को लगा मैं ऐसी नई दुनिया बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या करना होगा, आप जो कहेंगे मैं करने लिए तैयार। और उसके लिए बाबा ने उनको कहा कि अपना तन मन धन सब माताओं को अर्पित कर दो। कितना बड़ा कदम, और बाबा ने कुछ भी आगे पीछे नहीं देखा, कैसे होगा, लौकिक में बच्चे थे क्या नहीं था, बड़ा परिवार था। पर शिव बाबा ने कहा और फट से बहनों के नाम पर विल कर दी सारी प्रॉपर्टी। ये नहीं सोचा क्या होगा, मेरा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। बस शिव बाबा ने जो कहा वो लगन ऐसी लग गई। और ब्रह्मा बाबा के आगे को देख करके तो फिर बहुतों ने किया, तो ब्रह्मा बाबा उदाहरण बन गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कोई उदाहरण नहीं था, थोड़ा आगे आई माताएं, बहुत आगे नहीं तो दिखाई नहीं, थोड़ा बीच में जगह नहीं छोड़े, बीच में जगह नहीं छोड़े। तो ब्रह्मा बाबा को देखकर फिर दादियों ने किया। क्या लगन थी उस समय, बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, कुछ भी नहीं देखा, बस ब्रह्मा बाबा हैदराबाद से कराची चले गए और जैसे पता चला बाबा कराची चले गए, बस सब कुछ छोड़ के बाबा के पास पहुंच गए। पर उस समय तो भट्टी बननी थी इसलिए बाबा ने सब स्वीकार किया। लेकिन अभी तो बदल गया ना समय, तो अभी तो बाबा कहते बच्चे कुछ भी छोड़ना नहीं है, जिस हाल में हो उसी हाल में रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, छोड़ना नहीं है लेकिन क्या करना है, कहीं भी फंसना नहीं है, ये भी एक कला है, फंसना कहीं नहीं है, कहीं भी न अटकना है, न चटकना है, न मटकना है। दादी जान की ये शब्द यूज करती है, अटकना मटकना चटकना और क्या क्या होता है, नहीं फंसना कहीं भी नहीं है। फंसो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, क्योंकि अभी तो हिसाब किताब चुकतू करने का समय है, इसलिए नया भी नहीं जोड़ना है। कई हमसे पूछते हैं कि कईयों के साथ कनेक्शन होता है, कई बातें होती है, तो कैसे पता चले कि पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या कोई नया हिसाब किताब बन रहा है, पता कैसे चले? तो बहुत सहज है पता करना। अगर हम हर जो भी बातें होती है उसमें तीन बिंदु लगाते जाते हैं तो समझो पुराना हिसाब किताब चुकतू होता जा रहा है। अगर तीन बिंदु नहीं लगाते हैं तो हिसाब किताब बन रहा है, बस सिंपल सी बात है। और हिसाब किताब चुकतू हो रहा है माना घाटा खत्म हो रहा है और फायदा शुरू हो रहा है। कल भी बाबा ने कहा, कल था या परसों, बाबा ने कहा कि तुम बड़े बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, घाटा फायदा, किसमें घाटा है किसमें फायदा है वो ही सारा दिन उनकी बुद्धि में रहता है। तो जो घाटे का काम है वो थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे, फायदा ढूंढेंगे, फायदा किसमें। वो तो स्थूल बातें हैं, लेकिन हम फायदा और घाटा किस बात का अनुभव करते हैं, हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारा श्वास, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति, जो भी बाबा ने हमें ज्ञान के खजाने दिए हैं, गुणों के खजाने दिए हैं, शक्तियों के खजाने दिए हैं, इनको कितना सफल कर रहे हैं। अगर ये सफल होते जा रहे हैं माना कमाई होती जा रही है और घाटा खत्म होता जा रहा है। किसी के सिर पर ऋण हो तो वो ऋण चुकतू करने लिए कमाना तो पड़ेगा ना, तभी तो ऋण चुकतू करेंगे। तो एक तरफ तो कमाई करनी है और दूसरे तरफ कमाई भी कौन सी, 21 जन्मों की कमाई और 63 जन्मों का घाटा है। आप सोचो पूरा 84 जन्म, 21 जन्मों की कमाई भी करनी है, वो भी यही करनी है, सत्युग में तो जाके नहीं करेंगे ना, वहां तो खाली खाएंगे, कमाई अभी करनी है, और 63 जन्मों से घाटा ही लाते गए, घाटा ही होता गया, विकारों के वश होके घाटा ही हुआ। तो इतना बोझ है हमारे सिर पर, तो इतनी कमाई करनी है जो 21 जन्मों की कमाई जमा हो जाए और 63 जन्मों का घाटा खत्म हो जाए। तो कितनी कमाई करनी होगी, वो कमाई दो रूप से होती है। एक तो जो बाबा ने हमें ज्ञान योग धारणा सेवा जो चार विषय दिए हैं उसमें जितना हम मग्न रहते हैं उतनी कमाई है। और घाटा कैसे कम होता है, जितना तीन बिंदु लगाते जाते हैं, एक के पीछे जितने बिंदु लगाते गए तो क्या होता है, कमाई होती जाएगी, घाटा खत्म होता जाएगा। जो बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में पदम की कमाई है, पद्मों की कमाई है। एक संकल्प उठाया, वो संकल्प कैसा था, पॉजिटिव था, सकारात्मक था, नकारात्मक था, वो हमें देखना होगा। अगर नकारात्मक था तो थोड़ा घाटा हो गया और एक सेकंड में बिंदु लगा दो, नहीं नहीं, ब्रेक लगाते हैं ना ब्रेक, तो ब्रेक लगाने से कितने एक्सीडेंट से बच जाते हैं, नहीं तो कितने जबरदस्त एक्सीडेंट होते हैं। हमने तो अमेरिका में देखा क्या बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, बात मत पूछो। हाँ, एक गाड़ी का नहीं, एक गाड़ी को टक्कर मारा तो दूसरी गाड़ी दूसरी के पीछे, तीसरी तीसरी के पीछे, चौथी, क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड होती है, रोड इतने सुंदर है तो बहुत फास्ट चलाते हैं, तो कितनी गाड़ियां एक साथ टक्कर लेती और कितना नुकसान होता है। तो इसीलिए हम तो संगम युग पर, बाबा कहते तुम ऐसे बड़े बिजनेसमैन हो जो तुम्हारा घाटा भी बहुत ज्यादा और फायदा भी बहुत ज्यादा। जैसे छोटे मोटे व्यापारी होते ना तो घाटा भी थोड़ा सा और फायदा भी थोड़ा सा, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका घाटा भी होगा तो करोड़ों में होगा और फायदा भी होगा तो करोड़ों में होगा, है ना। तो हम तो उनसे भी बड़े बिजनेसमैन है ना, हमारे लिए तो पद्मों की कमाई है, तो घाटा हुआ तो पद्मों का घाटा और कमाई हुई तो पद्मों की कमाई। तो ऐसे में कैसे एक सेकंड में हम ब्रेक लगा सकें, मैं आत्मा हूँ, बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा और भी अच्छा, ये बिंदु लगाने के तरीके हैं। इससे क्या होगा, हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति सब बच जाएंगे और कमाई होती रहेगी। तो बाबा हर मुरली में हमें बताते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ दिया अरे झंझट में कौन जाएगा, छोड़ दो, लेकिन हिसाब किताब है तो छोड़ भी नहीं सकते। जब हिसाब किताब पूरे होंगे तो अपने आप छूट जाएगा, हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पर जब तक है तब तक तो छोड़ नहीं सकते। हम सन्यासी तो नहीं है ना छोड़ के जंगल में चले गए, वो भी नहीं करना है। शुरू में तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि यज्ञ बनना था, भट्ठी उस रूप से पकनी थी, फाउंडेशन डलना था। अभी तो इमारत बन गई है, अभी तो केवल उसमें डेकोरेशन करना है। जिनको पद पाना है वो तो सब स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो गया है, अब तो जो एक्सेसरीज है ना वो सब आएंगे, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसीलिए वो कार्य तो हो चुका है, परंतु अभी अंत के नजदीक है, तो अंत के नजदीक होने के कारण हमें और भी सावधान होना है, क्योंकि बाबा ने तो हमें कह दिया है बच्ची अचानक होगा, अचानक होगा, और अचानक अगर होगा तो उसके लिए हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कौन सा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत का पेपर एक सेकंड का आएगा, एक सेकंड का, अशरीरी बनने का एक पेपर एक सेकंड का, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति में पास होने के लिए एक सेकंड का ही पेपर आएगा, कि अशरीरी है या नहीं है, कहीं भी बुद्धि गई फेल। तो इसीलिए बाबा कहते वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास कैसे करेंगे, एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, मैं आत्मा हूं। अगर अशरीरी स्थिति में भी ये शरीर भी प्रकाश का शरीर, तो देखो कितने हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। छोड़ो तो छूटो, इंग्लिश में कहते हैं लेट गो एंड लेट गॉड, छोड़ो तो छूटो, फंसो नहीं। तो न फंसना है न छोड़ना है, क्योंकि छोड़ दिया तो हिसाब किताब तो खींचेगा ना, तो बुद्धि जाएगी, इसलिए छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है कि चलो नया जोड़ें, नया कुछ करें, वो भी नहीं, क्योंकि नया शुरू करेंगे फिर कब चुप्तू करेंगे। तो नया भी नहीं हिसाब किताब बनाना है, पर जो पुराना है खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चौथी चीज, छोड़ना भी नहीं, फंसना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं, तो चौथा क्या है जो करना है, कि हम कहते हैं निभाना है, निभाना है, निभाना माना है साथ में लेकिन फिर भी न्यारे हैं। तो कहाँ न्यारा बनना होता है, कहाँ प्यारा बनना होता है, बाबा वो भी बताते हैं, कहाँ बालक बनना होता है, कहाँ मालिक बनना होता है, वो भी बाबा बताते हैं। ऐसे न हो कि जब न्यारा बनना है तो प्यारे बन जाएं, जब प्यारा बनना है तो न्यारे बन जाएं। वो परख शक्ति भी चाहिए, कहाँ बालक बनना है कहाँ मालिक बनना है। तो बाबा उसका राज भी बताते, जब संगठन में हो तो संगठन में बालक बन जाओ, जब अकेले पुरुषार्थ में हो तो फिर दूसरों को मत देखो, वो मालिक बन के देखो। क्योंकि माया तो बहुत पीछा करेगी, माया छोड़ेगी नहीं, अंत तक माया नहीं छोड़ेगी। हर कदम पर माया का वार हो सकता है, जैसे दुश्मन सामने है तो कहां से भी अटैक करेगा ना, और जो वीक पॉइंट होगी उसी तरफ से अटैक करेगा। चोर भी कहां से अटैक करता है, जहां पर थोड़ा सा उसको खुला मिला वो अटैक करेगा। और अटैक करके क्या करता है, चाहे दुश्मन हो चाहे चोर हो, वो अटैक करता है तो क्या करता है, सबसे पहले जो रिसोर्स है ना, जहां उनकी संपत्ति है, जहां उनकी शक्ति है, उसको अटैक करेगा। दुश्मन भी ऐसे ही करेगा, जहां सोर्स रिसोर्स है, उत्पादन है, वहां पर ही अटैक करेगा, वो उत्पादन को खत्म करेगा। और दूसरा क्या करेगा, एक तो उत्पादन को खत्म करेगा ताकि वो शक्ति खत्म हो, और दूसरा दूसरे से शक्ति न मांगे न ले सके, उसके लिए कम्युनिकेशन भी तोड़ देगा, वो टेली कम्युनिकेशन का टावर या कनेक्शन जो बाहर से भी न ले सके कोई तोड़ देगा, ताकि बाहर से भी मदद न ले सके। तो उसकी अपनी शक्ति खत्म करेगा और दूसरे से शक्ति लेने में भी वो नष्ट कर देगा, ताकि वो भी न ले सके, तो बेबस हो जाएंगे। तो माया भी क्या करती है, पहले जो आत्मा की जो का जो रिसोर्स है, रिसोर्स जो उसका उत्पादन माना, जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा के अंदर जो मूल गुण है, उसको नष्ट कर देगी माया। कोई भी विकार के वश होते हैं, ये आत्मा का पवित्रता शांति प्रेम सुख सब खत्म, सब खत्म हो जाता है। और फिर दूसरा कम्युनिकेशन लाइन कैसे तोड़ती है, बाबा से योग तोड़ देगी। तो अपना तो खत्म हुआ, चलो बाबा से तो ले, वो बाबा से भी लेने नहीं देगी, योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि माया का वार है। और कैसे पता चलता है माया का वार है, बाबा हर मुरली में अलग अलग तरीके बताते माया कैसे वार करती है। कभी नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, कभी चोटी से पकड़ती है, कभी थप्पड़ लगाती है। आपने नोट किया है माया कैसे वार करती है, बाबा हर मुरली में अलग अलग बातें सुनाते हैं। कभी घूसा मारती है, कभी गिरा देती है, बेहोश कर देती है, और कभी तो एकदम मार भी डालती है। तो थोड़ा विचार सागर मंथन चला कि इसका मतलब क्या है, नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, कैसे पकड़ती है। तो नाक से जब किसको पकड़ा जाता है तो क्या होता है, वो सफोकेशन होता है, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक से अगर पकड़ा जोर से तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अंदर में कंफ्यूजन, एकदम जैसे मूंज, चाहे ज्ञान में मूंज, चाहे धारणा में मूंज, चाहे सेवा में, किसी भी सब्जेक्ट में जो अंदर में मूंज होती ना, ये समझो माया ने नाक से पकड़ लिया, ये समझ लो। मूंज रहे हैं, निश्चय की कमी, हिल रहे हैं, मूंज रहे हैं, तो ये माया ने नाक से पकड़ लिया है। फिर कान से कैसे पकड़ती है, कान से कैसे पकड़ती है, जब पर चिंतन, दूसरों का सुनते, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाँ, पर चिंतन की बातें सुनते रहते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, तो कान से पकड़ा माया ने, ये समझ लो। हमको क्या लेना देना दूसरों से, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है बस। पर दूसरों की बातों में रस लेना, ये माया ने कान से पकड़ लिया। फिर तीसरा, हाँ, पीछे चोटी पकड़ती है, तो चोटी पकड़ती तो क्या होता है, चोटी पकड़ती है तो क्या होता है, पीछे सिर चला जाता है ना, चोटी पकड़ी, बाल पकड़े, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, कई कंपेयर करते हैं, पहले तो मैं बहुत स्वतंत्र था, मैं जो चाहूं खाऊं, जहां जाऊं ये करूं, अपने मन मौजी था। अभी तो बाबा कहते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। तो अभी मैं अमेरिका गई ना, तो वहां पर फ्रीडम, फ्रीडम पर फ्रीडम, उस भले नाम है फ्रीडम अमेरिका में, परंतु कितने बंधन है वहां, हमने वो देखा, बंधन है कितनी, कैसे शिष्टाचार, कैसे ये जो डिसिप्लिन्स है ना, रूल्स रेगुलेशंस, और अगर उन पर नहीं चले तो कितना दंड बहुत है। तो इसलिए सब बहुत डरते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ऐसा ये कहीं भी किसी भी बात में उल्लंघन नहीं करते, इतने नियम कड़े हैं। परंतु उसमें फायदा है, अगर नियमों पर चलते हैं तो फायदा है, क्योंकि उससे फिर जैसे मुक्त है ना, क्योंकि नियमों पर चल रहे हैं। परंतु फ्रीडम के नाम पर मैं जो चाहूं सो करूं, तो उसमें बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं। तो फ्रीडम के नाम पर बंधन, और नियम मर्यादाओं में चलने से बंधन के नाम पर भले बंधन लगता है, परंतु उसे आत्मा को मुक्ति मिलती है, मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने जो भी हमें नियम दिए हैं, वो आत्मा के लिए कितने कल्याणकारी है, उन डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कितने कल्याणकारी है वो हम अनुभव करते हैं। तो बुद्धि कहीं भी नहीं जाती है, कहीं भी नहीं जाती है, जिसको बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, बाबा कितना कहते हैं। तो सचमुच ये अनुभव होता है, क्योंकि मर्यादाओं में रहते हैं ना हम, योग का कवच पड़ा हुआ है, दुश्मन का वार नहीं होता है। परंतु फिर कई क्या करते हैं, चलो औरों को नहीं देखेंगे पर खुद का पास देखेंगे, कि पहले तो मैं बहुत फ्री था, मैं जहां आया जहां आया खा सकता था, पी सकता था, कुछ भी कर सकता था, अभी ये नहीं करो वो नहीं करो। तो पीछे तो अपना बैक देखते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, अपना बैक किस पीछे किस कारण से देखो, वास्तव में देखो नहीं, आगे ही देखना है, आगे ही देखना है, क्योंकि मुझे आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पीछे मुड़ के देखना माना कल से आज मेरा पुरुषार्थ कितना आगे है, कल जो मेरा पुरुषार्थ था उसे आज कितना आगे है। दूसरों से कंपटीशन मत करो, दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो आप अपना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बजाय कल से मैं कितना आज आगे हुआ हूं, आज से कल कितना आगे जाऊंगा, वो अपने साथ ही कंपटीशन और भेंट करो, ये भेंट अपने साथ ही करनी है। कल मेरी स्थिति कैसी थी, इस परिस्थिति में मैंने अपनी स्थिति कैसे बनाई, और आज वो परिस्थिति आई तो कैसे मैंने स्थिति बनाई, आज मेरे अंदर सहन शक्ति ज्यादा थी, आज मेरे अंदर सामना करने की शक्ति ज्यादा थी, तो कल से आज मैं ज्यादा अच्छी हो गई। ये है अपने साथ भेंट करना, पीछे वो मुड़ के उस रूप से नहीं देखना कि पहले मैं स्वतंत्र था, जो चाहता था कर सकता था, अभी बाबा ने बंधन डाल दिए हैं, नहीं वो नहीं। अगर बंधन है तो ये मुक्त होने के लिए है, ताकि आत्मा सहज मुक्त होकर के वापिस घर जा सके, नहीं तो हम बंधनों में बंधते जाएंगे, और अगर बंधनों में बंधते गए तो हिसाब किताब धर्मराजपुरी में चुकतू करने पड़ेंगे। अभी भले चुकतू हो जाए, कम से कम धर्मराजपुरी में तो हम को धर्मराज भी सलूट करे, सलूट करे, रिस्पेक्ट दे, न कि सजा दे। इसलिए अभी कर्म भोग हो रहा है कोई बात नहीं, ये कई तो इतना डर जाते बाबा के बने ना इसलिए ये हिसाब किताब आया, बाबा के बने ना इसलिए, बाबा के बने तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे ना, और ये अच्छा है ना, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जा रही है तो हर्जा नहीं है। इसलिए जब ये बुद्धि में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो माया कैसे पीछे बुद्धि ले जाती है, तो बहुत संभालना है अपने आप को। फिर क्या करती है माया, थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने से क्या होता है, साइड में मुड़ जाते हैं ना, साइड में, तो दूसरे क्या कर रहे हैं तो भेंट उनसे करना, माना या तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना आएगी, मैं तो उनसे अच्छा हूं, ठीक है, मैं तो अमृत वेले भी उठता हूं, तो अमृत वेले भी नहीं उठता है, मैं तो रोज क्लास में जाता हूं, तो क्लास में भी नहीं आता है, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैं। अब बाबा कहते ये भी माया है। तो दूसरों से भेंट नहीं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है हीनता की भावना, वो कितना आगे है, मैं तो बहुत पीछे हूं, मैं कैसे उन तक पहुंच सकूंगा, ये भी नहीं देखना है, मैं अपने रूप से आगे बढ़ू, क्योंकि हर एक की क्षमता अपनी अपनी है, हर एक की। इसलिए बाबा कहते यथा योग यथा शक्ति, यथा योग यथा शक्ति। हम दूसरों से भेंट नहीं करते हैं अपने, पर अपने से भेंट करते हैं, परंतु इसका मतलब है कि हम कंपटीशन में नहीं है, उस रूप से नहीं है, पर दूसरों को देख करके अभिमान आ जाए या दूसरों को देख करके हीनता की भावना जागे, ये भी बाबा कहते ये माया थप्पड़ मार देती है। फिर क्या करती है माया, पंच करती है, माना घुसा मारती है। तो घुसा मारती है माना किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मुझे तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, जैसे पेन, दर्द, अंदर का दर्द। तो बाबा कहते ये दर्द क्यों, अच्छा कहा तो क्या हुआ, का क्या हुआ, कहाँ लगा, खाली मुख से ही कहा ना, वो तो उसकी जैसी, उसकी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना, बाबा हमको किस रूप में देखते हैं। तो इसमें कई दो प्रकार के प्रश्न लोग पूछते थे, एक है स्वमान और दूसरा है अभिमान। स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है, कई बार वो स्वाभिमान हम कहते हैं, पर वो एक स्वमान और अभिमान उसमें सूक्ष्म अंतर है। अभिमान किसको कहेंगे, जब कोई भी उपलब्धियों के आधार पर अभिमान है उसको हम अभिमान कहेंगे, मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ये हूं, हाँ मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरी पोजीशन बड़ी है आदि जो भी, तो उसका अभिमान। और दूसरा है स्वमान, स्वमान माना आत्मा के गुणों का मान, आत्मा के गुणों का मान, अर्थात कि आत्मा के जो गुण हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उसका इतना हम मान रखें कि कभी भी वो हमसे दूर ना हो, कुछ भी हो जाए पर मुझे अपनी शांति खोनी नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे सबके साथ प्यार प्रेम खोना नहीं है, कुछ भी हो जाए पर मुझे अपनी खुशी गंवानी नहीं है, ये है स्वमान। अब उस स्वमान में हम कैसे रहें, वो नहीं होता है तो छोटी छोटी बातों में अपमान महसूस होता है। ये अपमान महसूस होना, सेंसिटिव नेचर जिसको बाबा कहते हैं, ये अपमान महसूस होना, ये भी दे अभिमान की निशान, ये माया ने घुसा मारा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, हाँ उसने मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं किया, क्या लगा बाबा मुझे किस नजर से देखते, मैं तो वो देखूं ना। हाँ तो इस तो बहुत बातें हैं इसमें, इसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन माया ऐसे आती है और फिर धीरे धीरे क्या करती है, गिरा देती है, बेहोश कर देती है, मार डालती है। कैसे मार गई, कोई ना कोई विकार के वशीभूत हो गए। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना है, कहीं भी माया का वार न हो। पहले तो साकार मुरली में बाबा कहते थे भले चलो कर्म में नहीं आए, कर्म में मत आओ, संकल्प में आया तो कोई बात नहीं। अभी अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा तो संकल्प तो क्या स्वप्न तक भी बताते, बच्चे स्वप्न मात्र भी नहीं आना चाहिए, कोई भी विकार अगर स्वप्न में भी आ गया ना तो भी वो पाप बनता है, क्योंकि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊंचे चढ़ रहे हैं। स्वप्न तो फिर भी हमारे वश में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, इसीलिए बाबा स्वप्न भी कहते हैं, बाकी चलो फिर भी अपने वश में है, हम उनको रोक सकते हैं, स्वप्न नहीं रोक सकते हैं। परंतु वो स्वप्न का आधार भी क्या है, हमारे पुराने संस्कार। अगर वो स्वप्न आते हैं, माना वो संस्कार अभी तक बदले नहीं है, तो वो भी कैसे बदलना है, अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्थिति, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो यहाँ आप 3 दिन आए हो, ये 3 दिन ऐसा ही अनुभव करना, मौन माना सोचना भी नहीं है, सोच से भी परे हैं, क्योंकि सोचेंगे तो फिर बोलेंगे। बस क्या करना है, सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, उसी में मगन। तो मनन भी करो, मंथन भी करो, अध्ययन भी करो, जो बाबा ने सवेरे का सारा दिन उसी का ही हो, और दिन भर आपकी क्लासेस चलेंगे। तो जैसे आप खान में आए हो, खान, ये खान है, जैसे जितने रतन लेने चाहो ले सकते हो, जितना आप भरना चाहो भर सकते हो, ताकि यहाँ से जब जाएं तो बिल्कुल वो संस्कार हमारा, कोई भी कमजोरी है माया के वश कोई भी है, वो एकदम खत्म हो जाए। ऐसी योग तपस्या करके जाना है, और ये 4 धाम की यात्रा करेंगे, उसमें भी बाबा के साथ सर्व संबंध ये अनुभव करने है। बाबा के कमरे में माता पिता का अनुभव करो, बाबा कैसे माता पिता के रूप में बच्चों से मिल रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा को टीचर के संबंध से मिलो, कैसे बाबा टीचर बन करके पढ़ाते हैं विश्व की आत्माओं को। शांति स्तंभ पर जाओ तो बाबा सतगुरु के रूप में आत्मा को पावन बना रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, हड्डियां गला रहे हैं, फरिश्ता बना रहे हैं। जो झोपड़ी में जाओ तो बाबा को सखा रूप में अनुभव करो, कैसे सखे सखा को सब बातें बताई जाती है, जो माँ बाप को नहीं बताएंगे, टीचर को नहीं बताएंगे, गुरु को नहीं बताएंगे, पर सखा को बताएंगे। तो बाबा हमारा सखा भी है, तो 1-to-1 और इतना कॉन्फिडेंशियल सखा है, जो भी आप बाबा को बताओ बाबा अपने तक ही रखेगा, किसी और को नहीं बताएगा। दूसरी आत्माओं को सुनाएंगे तो आपकी सीक्रेट्स भी आउट कर देंगे, हो सकता है, पर बाबा तो बहुत फेथफुल है, बहुत फेथफुल, इतना ही है, आप विश्वास पात्र हैं, और इतना ही शक्ति का सागर है, दाता है, और उसको दिया सागर में स्वाहा हो गया, सागर में स्वाहा किया तो क्या होगा, सागर फिर भी स्वच्छ। तो बाबा को समर्पित कर दिया, जो भी कोई भी बात है तो एकदम बुद्धि साफ हो गई, हम सागर समान बन गए। सागर का काम क्या होता है, हल्की चीज किनारे फेंकेगा और भारी चीज अंदर ले लेगा, तो काम की चीज अंदर और बाकी सब बेकार खत्म, ये अनुभव करना है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7:30 बजे चलिए अभी हम बाबा को याद करेंगे, यही लक्ष्य बुद्धि में हो 3 दिन का, यही उद्देश्य बुद्धि में हो कि हमको बाप समान बन करके, संपूर्ण पवित्र बन करके, संपन्न बन के घर जाना है, और घर जाकर फिर नई दुनिया में आना है।
शिली दीदी का हम सभी दिल से धन्यवाद करेंगे, और आप सभी ध्यान रखें कि आवाज से परे की दुनिया में हम हैं। तो जब भी जिसका भी क्लास हो तो एक हाथ की ताली, चाहे स्वागत चाहे धन्यवाद, नैनो से और एक हाथ की ताली।
आज के दिन छुट्टी,
आज के दिन छुट्टी, आज तो छुट्टी है ही।